जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र,
हाँ,
जय
पंडित जी।
जिनेन्द्र।
हाँ पंडित जी, कैसे हो आप?
बस ठीक है।
हाँ, पंडित जी शुरू करते हैं।
ठीक, मंगलाचरण चालू होता है। वंदे तू सब सिद्धि दुग्मचल मनोभवम गदिम पते, बोच्छामि समय पाहुड़ो मिण मौसुद के वली बणिदम। नमा समय साराय सानुभूत्या चकाशते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये समय सारजी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। अभी इसमें अपन ने अभी तीसरा अध्याय लिया है और इस तीसरे अध्याय में पुण्य पाप अधिकार चल रहा है और ये समापन की ओर है। कल अपन ने 160 नंबर की गाथा ली थी, उसकी टीका भी ली थी और थोड़ा सा उसका भावार्थ था, वो भी हम दोबारा रिवाइज करते हैं और आगे की तीन गाथाएं आखिरी गाथाएं बे लेते। इसका जो भावार्थ था वो इस प्रकार से था, जो कल 160 नंबर की गाथा चली उस गाथा का भावार्थ ऐसा है, यहाँ भी ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए। जनरली ज्ञान और आत्मा में लक्ष्य लक्षण का भेद तो होता है, लेकिन इसका प्रयोग जनरली जो हुआ करता है वो है ज्ञान मेव आत्मा। आत्मा है वो ज्ञान ही है, और ज्ञान नाम से संबोधन करें तो समझो आत्मा का संबोधन है। इसलिए यहाँ इन्होंने लिखा, यहाँ ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए। ज्ञान अर्थात आत्म द्रव्य स्वभाव से जो सबको जानने देखने स्वभाव वाला है ऐसा, परंतु अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मों से आच्छादित है। और वो अपराध के लिए टीकाकार ने तो ये लिखा था कि वो अपने पुरुषार्थ का अपराध, जब बात है पुरुषार्थ का अपराध क्या होगा, तो पुरुषार्थ का अपराध ये है कि पुरुषार्थ को निरपराधी बनना हो तो पुरुषार्थ करेगा कौन, वो पुरुषार्थ है क्या? तो पुरुषार्थ वास्तव में ज्ञान उपयोग की पर्याय है वो, और वो परसन्मुख होती है तो वो अपराध होता है, और वो स्वसन्मुख होती है तो निरपराध होता है। यानी जब जब वो कर्मों से लिप्त होती है, कर्मों में एकाकार होती है, तन्मय होती है, तो वो उस पुरुषार्थ का अपराध है, उस आत्मा का अपराध है, उस ज्ञान पर्याय का कमजोरी कहना चाहिए अपराध है। और जब वह पर्याय पर में लिप्त न होकर पर से हट के अपने ज्ञायक स्वभाव में लिप्त होती है, उसमें लीन होती है, तो पुरुषार्थ की का जो अपराध है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने यही लिखा कि परंतु अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मों से आच्छादित है, यानी उसे होना तो चाहिए था निरंतर ज्ञाता दृष्टा, लेकिन ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला होते हुए भी सर्व को एक साथ जाने एक साथ देखे ऐसे स्वभाव वाला होने पर भी वो भूल से अपने स्वभाव में मग्न न होकर कर्मों के जो शुभ कर्म हैं उनके कार्य में उपयोग इसका जाता है तो उनसे लिप्त हो जाता है, और उनसे लिप्त होने के काल में इसका पुरुषार्थ जो अंतर्मुखी होना था वो पुरुषार्थ विपरीत दिशा में बहिर्मुखी हो जाता है, और बस यही उसकी उसके पुरुषार्थ का अपराध है। और इसी अपराध से जो इसे अपने स्वरूप की प्राप्ति होना थी वो स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए इन्होंने लिखा है अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मों से आच्छादित है। क्योंकि जब उपयोग बहिर्मुखी होता है तब नियम से कर्मों का आश्रय होता है, बंद होता है, और आत्मा उससे आच्छादित होता है। और यदि उसका पुरुषार्थ स्वसन्मुख हो तो फिर आत्मा आच्छादित नहीं होता है और आत्मा में कोई मलिनता भी नहीं आती है। अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा कर्मों से लिप्त आच्छादित होता, फिर लिखा इसलिए वह अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता है। संपूर्ण स्वरूप को जानने वाला आत्मा अपराध वाली प्रवृत्ति में नहीं चलता, वो निरपराधी माने स्वरूप की मग्नता में वर्तता है, और स्वरूप की मग्नता में पूर्णता की प्राप्ति होती है। यूं अज्ञान दशा में जो रह रहा है, जबकि रहना चाहिए था उसको अपने स्वरूप की पूर्ण दशा में, लेकिन वो पूर्ण दशा अपराध के कारण या पुरुषार्थ के अपराध के कारण वो पूर्ण दशा हो नहीं पा रही। इस प्रकार से केवल ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है अथवा मुक्त स्वरूप जो आत्मा है, वह आत्मा कर्मों से लिप्त होने से अज्ञान रूप अथवा बंधन रूप अवस्था में वर्तता है। इसलिए यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, अतः कर्मों का निषेध आगम में आचार्यों ने किया है। कर्म के निषेध का हेतु दिया कि वो कर्मों में जब जब आत्मा लिप्त होता है तो उसके पुरुषार्थ में अपराध पैदा हो जाता है, उसका पुरुषार्थ बहिर्मुखी हो जाता है, उसका पुरुषार्थ परावलंबी हो जाता है। परावलंबी पुरुषार्थ से कर्म का आश्रय होता है, कर्म के आश्रय से आत्मा की निर्मलता मलिन होती है और आत्मा संसार में ही बना रहता है। अगर उसे निर्मलता पाना है, संसार से छूटना है, तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि वो अपने पुरुषार्थ में पर से लिप्तता को हटावे और बुद्धिपूर्वक अपने स्वसन्मुख होकर अपने पुरुषार्थ को निर्दोष बनावे और निर्दोष पुरुषार्थ के द्वारा उसका जो स्वभाव है सर्व को जानने का देखने का, वह स्वभाव धीरे धीरे नियम से प्रकट होता है और आत्मा कर्मबंध से मुक्त होता है। लेकिन अभी जो आत्मा के कर्मबंध चल रहा है वो पुरुषार्थ की हीनता के कारण चल रहा है, और इसलिए पुरुषार्थ की हीनता के कारण जो कर्म हैं उन कर्मों का निषेध किया कि इस कर्म में ना प्रवर्तो, इन कर्मों से हटो और अपने को स्वभाव में परिवर्तन कराओ। इतनी बात अपनी कल चल चुकी है, आज अपन नई गाथाएं तीन लेना चाह रहे हैं और वे तीनों आखिरी गाथाएं हैं, और उन गाथाओं में भी यही बात सिद्ध करने वाले हैं कि सम्यक की प्रतिबंधक जो मिथ्यात्व अवस्था है वो अवस्था भी, चूंकि उसके उदय में जीव मिथ्यात्व भी बनता है और मिथ्यात्व मोक्ष का बाधक है, सम्यक मोक्ष का साधक है, इसलिए सम्यक का बाधक कर्म वो मिथ्यात्व है, और कर्म जो भी अपने रत्नत्रय में बाधक बनने वाले हैं वे सब कर्म हैं, और कर्म होने से भी आश्रय बंध के कारण है और भी संसार परिभ्रमण के कारण है। और जो अपने तीनों गुण हैं, सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक शार्थ, ये तीनों मुक्ति के कारण हैं। इसलिए अगर इन प्रतिबंधक कर्मों का निषेध किया जाएगा तो निश्चित ही स्वभाव के जो गुण हैं, श्रद्धा स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, चारित्र स्वभाव, ये तीनों आत्मा के स्वभाव हैं। और अभेद में कहें तो दर्शन ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, चारित्र ही आत्मा है, ये अभेद कथन है। वेद कथन कहें तो आत्मा का सम्यक दर्शन, आत्मा का सम्यक ज्ञान और आत्मा का सम्यक चारित्र, ये वेद कथन है। अभेद कथन आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है और आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप है, ऐसा कथन ये अभेद कथन होता है। और इनको ही जब अलग अलग करके कहते हैं कि ये आत्मा का दर्शन है, ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मा का चारित्र है, तो ये जब अलग अलग कहते तो ये भेद कथन हो जाता है। तो यहाँ गाथा में इन्होंने स्पष्ट समझाया है, गाथाएं तीनों इस प्रकार हैं। इसकी उत्थानिका में ऐसा लिया है, अथ कर्मणो मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वम दर्शयति। अब कर्म को मोक्ष के हेतु का तिरोधान करने वाला माने नष्ट करने वाला भाव के रूप में दिखाते हैं। वे तीनों भाव यहाँ बताएंगे, मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव और कषाय भाव। ये तीनों आत्मा के जो मोक्ष के हेतु हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को वे तिरोधायी भाव कहलाते हैं, तीनों का नाश करने वाले भाव हैं। गाथा सम्मत पडीण बद्धम मिच्छत्तम जिन वरे ही परी कहियम तस्सोदयेन जीवो मिच्छा दिथि तिणादो अनाणस पडीण बद्धम अन्नाणम जिन वरे ही परी कहियम तस्सोदयेन जीवो अन्नाणी होदि दबो चारित पडीण बद्धम कसाय जिन वरे ही परी कहियम तस्योदयेन दीवो आचार्यत्रो हो दीना दबो। ये तीन गाथाएं हैं, इनकी हिंदी भी ऐसी दी है। सम्यक्त प्रतिबंधक कर्म मिथ्यात्व जिन वरने का, उसके उदय से जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना। त्यों ज्ञान प्रतिबंधक कर्म अज्ञान जिन वरने का, उसके उदय से जीव अज्ञानी बने यह जानना। चारित्र प्रतिबंधक कर्म जिनने कषायों को का, उसके उदय से जीव चारित हीन हो यह जानना। क्या कहा कि सम्मत परिणिबद्धम, सम्यक्त का प्रतिबंधक, प्रतिबंधक माने विरोधी, प्रतिबंधक माने नाश करने वाला, प्रतिबंधक माने आच्छादित करने वाला, ऐसे ही सम्यक्त को आच्छादित करने वाला मिच्छत्तम मिथ्यात्व तो है। ये किसने कहा ऐसा कि मिथ्यात्व तो सम्यक्त का प्रतिबंध करने वाला है? जिन वरे हिम परी कहियम, जितने जिनेन्द्र भगवान हुए हैं उन सब जिनेन्द्र भगवंतों ने ये कहा है कि सम्यक्त का प्रतिबंधक कारण होता है वो मिथ्यात्व होता है। और उस मिथ्यात्व के उदय में तस्योदयेन जीवो, उसके उदय में जीव मिच्छा दिट्ठि ना दबो, मिथ्यात्व के उदय में जीव मिथ्या दृष्टि होता है ऐसा जानना चाहिए। जो जिन वर्णिंद्रों ने, जिन भगवंतों ने ये कहा है कि मिथ्यात्व कर्म का प्रतिबंधक है और मिथ्यात्व के उदय में जीव मिथ्या दृष्टि होता है ऐसा जानना चाहिए। दूसरी गाथा में ये कहा नाणस परिणिबद्धम, ज्ञान का प्रतिबंधक कारण, नाश करने वाला कारण, ढकने वाला कारण अन्नानम अज्ञान है, ऐसा जिनवरे ही परी कहियम, जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है। तस्योदयेन, और उस अज्ञान के उदय में जीवो अन्नानी होदी, जीव अज्ञानी होता है, अना दबो, ऐसा जानना चाहिए। फिर तीसरे गाथा में ये कहते हैं चारित्र परिणिबद्धम, चारित्र का प्रतिबंधक अगर कोई है, विरोधी अगर कोई है, नाश करने वाला अगर कोई है, आच्छादन करने वाला कोई है, तो कषायम कषाय है उसका नाश करने वाला, ऐसा किसने कहा? जिन वरे ही परिकहियम, जिनेन्द्र भगवंतों ने ऐसा कहा है। और उसका अगर उदय हो, किसका? कषाय का। तस्योदयेन जीवो, कषाय का उदय हो तो जीव अचारित्र दशा में होता है ऐसा जानना चाहिए। यानी तीनों गाथाओं में सच पूछो तो एक शब्द तो उन्होंने हर जगह बदला है, बाकी ज्यों की त्यों गाथा लिखी है, ज्यों की त्यों एक एक शब्द दोनों पंक्तियों में बदला है। पहली पंक्ति में अगर आया था कि सम्यक्त का बाधक कर्म मिथ्यात्व है ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, तो यहाँ जो जब दूसरी गाथा चालू की तो ज्ञान का प्रतिबंध करने वाला बाधक कर्म अज्ञान है ऐसा कहा। तीसरी गाथा में ये कहा चारित्र का प्रतिबंधक कर्म या नाश करने वाला कर्म कषाय है, और बाकी ये लिखा कि उनके उदय में, मिथ्यात्व के उदय में जीव मिथ्या दृष्टि होता है, अज्ञान के उदय में जीव अज्ञानी होता है, और कषाय के उदय में जीव अचारित्रवान होता है। ये तीनों बातें उसमें तीन गाथाओं में आई हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट हिंदी में ये बात लिखी है, जो इसका अनुवाद है वो पढ़ रहे हैं। तीनों गाथाओं का अनुवाद पढ़ते हैं। सम्यक्त को रोकने वाला मिथ्यात्व है ऐसा जिनवरों ने कहा है। यानी कुंद आचार्य को भी ये मालूम था कि जो भी उनका विरोधी होगा वो ये कहेगा तुम बात कर रहे हो, ये तुम बोल रहे हो, ये आप बोल रहे हो, वास्तव में ये कोई सर्वज्ञ की परंपरा की बात नहीं। तो उन्होंने कहा भैया जो बात मैं कह रहा हूँ वो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, जो बात परंपरा से सर्वज्ञों के ज्ञान में आई, गणधर के ज्ञान में आई, गणधर ने गूंथी और वो उस परंपरा को, मौखिक परंपरा को जिन आचार्यों ने चलाया, उन आचार्यों ने ये कहा है कि सम्यक्त को रोकने वाला मिथ्यात्व है, ऐसा जिनवरों ने कहा है, और उसके उदय से जो जीव प्रवर्तन करता है वो जीव मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों होता मिथ्या दृष्टि? कि मिथ्यात्व के उदय के अधीन जो वर्तता है वो मोह में वर्तता है, वो वस्तु स्वरूप को नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है, वो जो भी करेगा एकाकार हो करके शरीर की क्रिया का कर्ता बन के करेगा, राग की क्रिया का कर्ता बन के करेगा, राग में एकत्व बुद्धि रखेगा और जो शरीर है उसमें एकत्व बुद्धि रखेगा। और तो ठीक है, शरीर से जो भिन्न पदार्थ हैं, प्रकट भिन्न हैं, जो उसको दिखाई देते हैं अपनी इंद्रियों से के भिन्न, तथापि उनमें भी स्त्री पुत्र माल मकान आदि में भी वो एकत्व बुद्धि करता है। सो यह सब मिथ्यात्व कर्म के उदय का कार्य है, और मिथ्यात्व कर्म के उदय में मान्यता मिथ्या दृष्टि होने से वह आत्मा भी मिथ्या दृष्टि कहने में आता है। फिर आगे उन्होंने ये लिखा, ये तो उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए मिथ्यात्व के उदय में, ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है, ऐसा जिन भगवानों ने कहा है, जिन भगवंतों ने कहा है, और उस अज्ञान के उदय में जीव अज्ञानी होता हुआ चारित्र अज्ञानी होता है, ऐसा जिन भगवंतों ने कहा है। और फिर बाद में कहते चारित्र को रोकने वाला जो है वो कषाय है, चारित्र को रोकने वाली कषाय है, ऐसे जिन भगवंतों ने कहा है। और जीव जो उसके उदय में वर्तता है वो जीव अचारित्रवान कहलाता है। जगत में तो लोगों को खबर नहीं है, लोग तो ये मानते हैं कि हमने शुभ क्रिया कांड किया, मुनिराज भी अगर ये माने कि मैंने 28 मूल गुण की क्रिया की है तो ये उनकी वो मान्यता सच पूछो तो मिथ्यात्व के उदय वाली है। 28 मूल गुण की क्रिया मुनि में होगी, क्रिया होना मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन ये क्रिया को मैंने किया और उसके उदय में मैं उस रूप बना, ऐसी जो मान्यता है, मैं देह से एकत्व हो गया, देह की क्रिया का कर्ता हो गया, ऐसी जो मान्यता है उस मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। वो क्रिया अगर होती है तो ज्ञानियों के भी कमजोरी बस वो क्रिया होती, पर वो ज्ञानी उस क्रिया को अपना नहीं मानते, स्वामी नहीं बनते, कर्ता नहीं बनते, उसको भिन्न जानते, और भिन्न जानने के कारण उनका सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यथावत वर्तता है। लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन ज्ञान के साहित्य होने पर भी, इसके साथ में होने पर भी उनके आचरण में राग वर्तता है, तो वह राग वर्तना चारित्र की कमजोरी है, और चारित्र की कमजोरी का कारण दर्शन मोह ना होकर चारित्र मोह का उदय। जो भूमिका अनुसार चारित्र मोह का उदय होता है वो चारित्र की कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन उसको जो उपादेय नहीं मानता है उसकी श्रद्धा में दोष नहीं आता, उसके ज्ञान में दोष नहीं आता, मगर चारित्र में तो उतना कमजोरी जन्य दोष तो रहता ही है। और वह दोष कब मिटता है कि जब वह चारित्र के पर के कर्मों की उदय की जो अधीनता है, चारित्र मोहिनी कर्म की उदयाधीनता है, उसको भी छोड़े, और उसको छोड़कर अपने स्वभाव से, दर्शन स्वभाव से, ज्ञान स्वभाव से और चारित्र स्वभाव से, यानी अभेद रूप में एक आत्मा से जब उपयोग जोड़ता है, तब उसके सारे प्रतिबंध कर्म का अभाव होता है और वह वास्तव में देखा जाए तो चारित्रवान कहलाता है। जब तक उन उदय में जुड़ा रहता है तब तक वह जीव अचारित्रवान कहलाता है। तो श्लोक में तो शुभ कर्म को चारित्र बोला जाता व्यवहार में, और वे उसी को चारित्र मानते हैं। मोक्ष मार्ग में तो वीतरागता को चारित्र कहा है और उसी को मोक्ष मार्ग माना है, और वीतरागता ही मुक्ति का कारण है, उसी से संवर निद्रा मोक्ष होता है। लेकिन शुभ भाव रूप जो पर्णमन है, अगर उससे जीव मोक्ष मानता है तो दर्शन मोह है, उसमें मोक्ष को जानता है, उस राग भाव में मोक्ष को जानता है, तो ये अज्ञान का उदय है, और उस रूप प्रवर्तन करके अपने को चारित्रवान मानता है तो ये अचारित्र का उदय है। ये तीनों के उदय काल में संसार बढ़ता तो है, लेकिन इन तीनों का उदय का अभाव किस बल पर किया जा सकता है? आत्मा पुरुषार्थ करे, और पुरुषार्थ ये करे अपने को उदय जन अवस्था से न जोड़कर, वहां से हटाकर अपने स्वरूप में जोड़े, उस काल में उदय में आया हुआ कर्म खिर जाता है, और आत्मा नवीन कर्मों का आश्रय नहीं करता है, और प्रतिबंधक कर्म अपने आप जब निर्जरित हो जाता है तो आत्मा को निर्बंध दशा की प्राप्ति का अवसर आता है, वो आगे बढ़ता है और निर्बंध अवस्था को पा लेता है। इस तरह से तीन गाथाओं का अर्थ है। अब इन तीन गाथाओं की जो टीका है, मैं उसकी टीका भी पढ़ता हूँ, जो हिंदी में पहले पढ़ता हूँ और फिर उसको संस्कृत में भी दिखाऊंगा। देखिए टीका में ये लिखा है, सम्यक्त को सम्यक्त जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है। लो, सम्यक्त मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है। अब ये तीन जगह ये प्रयोग करेंगे इसी शब्द का, सम्यक्त जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है, ज्ञान जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है, चारित्र जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है। आप देखेंगे पूरी टीका में ये लाइन तीन बार रिपीट होगी, शब्द बदलेगा, सम्यक्त, ज्ञान और चारित्र ये बदलेंगे। देखिए, सम्यक्त जो कि मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला मिथ्यात्व है और वह मिथ्यात्व कर्म, वह स्वयं कर्म ही है। जो रोकने वाला है वो कर्म है और जो अपना स्वभाव है वो रोकने वाला नहीं। और उसके उदय में, किसके उदय में? मिथ्यात्व के उदय में यह जीव मिथ्या दृष्टि होता है। जब मान्यता मिथ्यात्व की चलेगी, फिर अगर कोई उसे मिथ्या दृष्टि कहे और उसको बुरा लगे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो मिथ्यात्व रूप परिणम रहा है, मान्यता उसकी मिथ्यात्व रूप हो रही है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि बना होता है। और ज्ञान जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, उसे रोकने वाला अज्ञान है, और उस अज्ञान का रूप हुआ है जो अवस्था वो स्वयं कर्म की है, और उसके उदय में जीव ज्ञान को छोड़ के अज्ञानी रूप होता है, उसके अज्ञानी पना होता है। और इसी तरह से चारित्र जो कि मोक्ष का कारण रूप स्वभाव है, जो ज्ञान को मोक्ष का कारण रूप स्वभाव कहा, चारित्र को मोक्ष का कारण रूप स्वभाव कहा, सम्यक्त को मोक्ष का कारण रूप स्वभाव कहा, लेकिन इनके प्रतिबंधक कर्मों को मोक्ष का विरोधी स्वभाव कहा, मिथ्यात्व को और उसके उदय को विरोधी कहा, अज्ञान को उसके उदय को विरोधी कहा, और कषाय को और उसके उदय को विरोधी कहा। इसलिए वो आचारित्र पना उसको होता है, इसलिए स्वयं मोक्ष के कारण का तिरोधायी भाव स्वरूप होने के कारण कर्म का जिनागम में सर्वथा निषेध किया गया है, और उसके सर्वथा निषेध में आत्मा का सर्वथा आश्रय होने पर आत्मा वास्तव में स्वाश्रित होने से पुरुषार्थ के अपराध को छोड़ देता है, और पुरुषार्थ निर्दोष होता है, और निर्दोष पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ को प्रकट करके मोक्ष मार्ग को प्रकट कर लेता है और मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये इस पुण्य पाप अधिकार में ये बात बताई है कि अगर मोक्ष का बाधक कोई है तो वो जो पुण्य भाव है वो मोक्ष का बाधक प्रतिबाधक कर्म है, प्रतिबंधक कर्म है, और मोक्ष के भाव को अगर प्रकट करना है तो प्रतिबंधक कर्म का अभाव करना होगा। प्रतिबंधक कर्म का अभाव करना है तो पुरुषार्थ का दोष या कमजोरी दूर करना पड़ेगी, और पुरुषार्थ का दोष यही है कि उपयोग स्वभाव में स्थिर न हो और पर में लगे, कर्म के उदय में लगे, कर्म में लगे, तो ये उसका कमजोरी है, और वहां से हट जाए, उग्र पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव में मगन हो जाए तो उसका दोष मिट जाता है, पुरुषार्थ पूरा प्रकट हो जाता है और मोक्ष मार्ग शीघ्रता से आगे बढ़ के पूर्णता को प्राप्त होता है। ये इन तीन गाथाओं का टीका के अनुसार और इन तीन गाथाओं का जो कहना चाहिए गाथाओं के अनुसार ये अभिप्राय है। इस अभिप्राय को पंडित प्रवर जयचंद जी साहब ने अपने शब्दों में इस तरीके से कहा, भावार्थ में ऐसा कहा, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष के कारण रूप भाव है। अब इन्होंने सीधे शब्दों में कहा, और उनसे विपरीत मिथ्यात्वादी भाव कर्म मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप हैं। मिथ्यात्वादी तीनों आ गए, तीनों भाव, मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव और कषाय भाव, इनको मिथ्यात्वादी भाव कहते हैं। ये भाव वास्तव में कर्म मिथ्यात्वादी भाव स्वरूप हैं। ये जो मिथ्यात्व है ये कर्म है और ये भाव स्वरूप है, कर्म रूप है। इस प्रकार कर्म मोक्ष के कारण भूत भावों से विपरीत भाव है, भाव स्वरूप है। पहले जो तीन गाथाओं में कहा था उनमें कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का सम्यक्त्वादि का घातक है ये कहा था। बाद की जो तीन गाथाएं हैं, बाद की एक गाथा में ये कहा कि कर्म स्वयं बंध स्वरूप है। पहले कारण रूप से बताया था बंध का कारण, अब ये बता रहे हैं वो स्वयं कार्य है बंध रूप। यानि मिथ्यात्व में दोनों चीजें बताएंगे, कारणपना माने आश्रव भाव भी बताया गया और कार्यपना माने बंध भाव भी बताया गया। आश्रव और बंध में कार्य कारण भाव होता है, आश्रव कारण होता है, बंध कार्य होता है। तो पिछली गाथाएं जो तीन थी उनमें उसको कारण रूप से निरूपण किया था, यहाँ पर उनको बंध रूप से निरूपण किया है कि वे वास्तव में तीनों माने मिथ्यात्व भाव, अज्ञान भाव और कषाय भाव तीनों बंध स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप नहीं है, ऐसा यहाँ बताया गया है। इस प्रकार कर्म के कारणभूत भावों से विपरीत भाव स्वरूप हैं। इन तीन गाथाओं में कहा था कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का सम्यक्त्वादि का घातक है, और यहाँ कहा है कि कर्म स्वयं बंध स्वरूप है, और इन अंतिम तीन गाथाओं में ये कहा है कि कर्म मोक्ष के कारण रूप भावों का विरोधी भाव है, नाश करने वाला भाव है, मिथ्यात्वादी स्वरूप है। इस प्रकार ये बताया कि कर्म मोक्ष के कारण का घातक है, बंध स्वरूप है और बंध का कारण स्वरूप है। वाह, तीन तीन बातें बताई। जो मिथ्यात्वादी भाव हैं, पहले तो उनको कहा कर्म के कारण है यानी कर्म बंध के कारण है, दूसरे ये कहा बंध स्वरूप है, और तीसरा उनको कहा कि बंध के भी कारण है, स्वयं बंध के कारण है, स्वयं बंध स्वरूप है और स्वयं मोक्ष के विरोधी, ये तीन तरीके से उनका निरूपण किया। इसलिए ये तीन प्रकार बताकर उनका निषेध किया, और अशुभ कर्म तो मोक्ष का कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है, इसलिए उसका तो निषेध किया ही है, क्योंकि वो तो स्वयं हीन जाति का कर्म है अशुभ, उसका तो निषेध किया। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि शुभ कर्म भी सामान्य में आ जाता है, और इसे शुभ कर्म भी बाधक ही है, इसलिए जैसे अशुभ कर्म को निषेध कहा था, निषिद्ध कहा था, निषेध किया था, ऐसा शुभ कर्म भी मोक्ष मार्ग में निषेध किया जाना चाहिए, ये यहाँ कहने का इनका अभिप्राय रहा है। और इसी बात को अमृतचंद्र आचार्य ने पहले तो टीका में कहा, देखिए उनकी टीका भी पढ़ते हैं, और उनकी टीका में हम ये दिखाते हैं कि उन्होंने टीका में किस ढंग से निरूपण किया। टीका यह कह रही है कि सम्यक्तस्य मोक्ष हेतु स्वभावस्य, सम्यक्त जो है वो मोक्ष के कारण रूप स्वभाव है, और मोक्ष के कारण रूप स्वभाव सम्यक्त का प्रतिबंधक अगर कोई है तो किल मिथ्यात्व, मिथ्यात्व उसका प्रतिबंधक है। तत तू स्वयं कर्म ही, वो मिथ्यात्व है वो स्वयं कर्म है, और तत उदयात उस मिथ्यात्व कर्म के उदय से ज्ञानस मिथ्या दृष्टित्व, ज्ञानी के आत्मा के मिथ्या दृष्टि बना होता है। ज्ञानस मोक्ष हेतु स्वभावस, दूसरी बात कर रहे हैं अब, ज्ञान मोक्ष के हेतु रूप स्वभाव का जो प्रतिबंधक कारण है किल अज्ञानम, वो वास्तव में अज्ञान उसका प्रतिबंधक कारण है। और तत तु स्वयं कर्मैव, और वह अज्ञान स्वयं कर्म रूप है, और तत उदयात उस कर्म के उदय से ही, उदयात एव ज्ञानस्य अज्ञानत्वम, ज्ञान का अज्ञानपना है, माने आत्मा अज्ञानी होता है। चारित्रस्य मोक्ष हेतु स्वभावस्य, चारित्र का मोक्ष का हेतु रूप स्वभाव होने पर भी उसका प्रतिबंधक किल कषाया, उस चारित्र का प्रतिबंधक कर्म या भाव वो और सातु स्वयं कर्मैव, और वो कषाय भाव भी कर्म है, और कर्म के उदय में तत उदयात एव, उस कर्म के ही उदय में ज्ञानस्य अचारित्रम, ज्ञान का अचारित्र होता है, यानी आत्मा के अचारित्र दशा होती है। अतः स्वयं मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात्, इसलिए स्वयं मोक्ष के हेतुओं का तिरोधान माने अभाव करने वाला होने से कर्म जो है प्रतिषिद्धम, कर्म का निषेध किया गया। ये अमृतचंद्राचार्य की मूल टीका के आधार पर इसका मैंने आपके सामने अर्थ बताया। अब इसके ही आधार से यहाँ एक कलश में अमृत चंद्राचार्य जी ने जो तीन गाथाओं की टीका में बताया, वो टीका का सारा सार इस 110 नंबर के कलश में भर दिया है। देख, और बड़ा सुंदर कलश आया है, अनेकों शंकाओं का समाधान करने वाला कलश आया है। इसमें ये लिखा है, मैं कलश पढ़ता हूँ, ये शार्दूल विकृत छंद है। मैं एक बात बता दूं आपको, अमृत चंद्राचार्य ने जो छंदों का भी प्रयोग किया है उसमें वैज्ञानिकता रखी है। ये वैज्ञानिकता रखी कि अगर शार्दूल विक्रीडित छंद है तो शार्दूल कहते हैं सिंह को और विक्रीडित कहते हैं उसकी क्रीड़ा को। अगर सिंह क्रीड़ा कर रहा है तो उसकी क्रीड़ा में कोई बाधक बनने वाला नहीं है, वो ऐसे ही उसकी क्रीड़ा और ऐसा उसका पुरुषार्थ होता है। और इस छंद में कहे गए जो भाव होते हैं वे भाव भी उत्कृष्ट जाति के पुरुषार्थ के प्रतीक होते हैं। जहाँ पुरुषार्थ का उग्र वर्णन करना होता है वहाँ आचार्य शार्दूल विकृत छंद लिखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, वो मैं छंद को पढ़ता हूँ। यावत पाक मुपैति कर्म विरत ज्ञान से सम्यक न सौ कर्म ज्ञान समुच्चयोपि बेहता तावन्न काचिच्छति किन्त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत् कर्म बन्धाय तत् मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः। यहाँ ये कहा, यावत
पंडित जी आपने 110
यावत पंडित जी आपने 110 चला रहा हूँ
109
इसके 109 है इसके पहले, एक मिनट देखिए जरा पन्ना पलटी इसको जरा, मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, तो पहले 109 कलश को ले रहा हूँ, वो कलश ध्यान से नहीं रहा, वो पन्ना पलट गया था। संन्यास्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना संन्यस्ते सति तत्र काकिल कथा पुण्यस्य पापस्य वा सम्यक्त्वादि निज स्वभाव भवनान् मोक्षस्य हेतुर्भवन् नैष्कर्म्यं प्रतिबद्ध मुद्दत रसम ज्ञानम स्वयं धावती। देखिए इस गाथा इस कलश का अर्थ करते हैं, क्या कहते हैं, संन्यस्तव्यम इदम समस्तम अपि कर्म तत्कर्मैव मोक्षार्थिना। जो मोक्षार्थी हैं, मुमुक्षु हैं, मोक्ष की कामना रखते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, संन्यस्तव्यम छोड़ दिया जाना चाहिए। किसको छोड़ दिया जाना चाहिए, इदम समस्तम अपि कर्म, ये जितने प्रकार के शुभ अशुभ कर्म हैं ये सारे ही कर्म मोक्षार्थी के द्वारा त्याग दिए जाना चाहिए, छोड़ दिए जाना चाहिए। और क्या कहा, संन्यस्ते सति तत्र किल क्या किल कथा पुण्यस्य पापस्य। जब सारे के सारे कर्म छोड़ देने पर छोड़ दिए जाना चाहिए तो उसमें पुण्य पाप की तो क्या बात है, पुण्य पाप तो उसमें गर्वित हो ही गए, यानी पुण्य पाप भी छोड़ देना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि भी कोई अपने स्वभाव नहीं। और आगे तीसरी पंक्ति में ये लिखा है, सम्यक्त्वादि निज स्वभाव भवनान, सम्यक्त्वादि निज स्वभाव का भवन है, निज स्वभाव का परिणमन है, इसलिए मोक्षस्य हेतुर भवन, वे काय के हेतु हैं, वे मोक्ष के ही हेतु हैं, इसलिए निष्कर्म प्रतिबद्ध मुद्दत रसम, जो निष्कर्म अवस्था है वो निष्कर्म अवस्था को प्रकट करते हुए जीव को ज्ञानम स्वयं धावती। जब जीव कर्म रहित अवस्था को प्राप्त होता है तो कर्म रहित अवस्था के द्वारा उसका ज्ञान स्वयं एव उछलता हुआ ज्ञान स्वयं प्रकट होता है, धावती माने दौड़कर आता है, ऐसा दौड़कर आता लिखा है उसके लिए, मतलब ये शीघ्र प्रकट होता है, कहने का अर्थ ये है। अब इस कलश का जो अर्थ है मैं वो अर्थ भी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखिए यहाँ लिखा है कि मोक्षार्थ ये समस्त प्रकार के कर्म त्यागने के योग्य हैं, क्यों हैं, क्योंकि जहाँ समस्त कर्मों का त्याग किया जाता है फिर वहाँ पुण्य पाप की क्या बात है, पुण्य पाप का तो त्याग हो गई, क्योंकि पुण्य पाप तो कर्म है धर्म नहीं है, कर्म भाव सब त्याज्य है, तब फिर पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ऐसी मान्यता के लिए अवकाश कहाँ है? ये मान्यता ही गलत है। कर्म सामान्य, दोनों सामान्य पने कर्म ही है, और फिर पुण्य अच्छा है पाप बुरा है, ऐसी बात कैसे कही जा सकती है? कर्म सामान्य में दोनों आ गए, और जब पुण्य भी आ गया पाप भी आ गया, तो फिर पुण्य पाप दोनों छोड़ने लायक सिद्ध हो गए। एक बात मैं जरूर इसमें स्पष्ट करूंगा, यहाँ तो दृढ़ता के साथ उन मुनि राजों के सामने ये बात कही जा रही है कि जब तुम निष्कर्म अवस्था को जब तक नहीं प्राप्त होगे और पुण्य परिणाम तुम्हारा मूल गुणों के पालन का भी चलता रहेगा, तो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति पाने के लिए निष्कर्म दशा चाहिए। कर्म रहित अवस्था में शुद्धोपयोग वर्तता है।
कर्म रहित अवस्था में शुद्धोपयोग
है। हेलो,
परिपूर्ण ज्ञान दौड़कर आ जाता है। हाँ
हाँ हाँ पंडित जी, एक
हाँ
हाँ हाँ पंडित जी, हाँ नहीं चालू रखते हैं।
हाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ।
हाँ हाँ
हाँ जी,
हाँ चालू
पंडित जी।
हाँ जी,
आप कंटिन्यू कर।
ठीक है, देखिए अभी कही थी ना कि ये जो कर्म है वो कर्म समस्त कर्म त्यागने योग्य हैं, उसमें पुण्य पाप भी गर्भित हो जाएगा। पुण्य पाप कोई न्यारी चीज नहीं है, कर्म ही है। और जब सब कर्मों को त्यागने योग्य कहा तो पुण्य पाप की तो क्या कथा करें, वे भी त्यागने योग्य हैं, ये कह दिया। और आगे फिर ये कहा उन्होंने कि चूंकि कर्म पाप रूप हो तो भी कर्म है, पुण्य रूप हो तो भी कर्म है, दोनों कर्म ही है। जब दोनों कर्म है तो दोनों त्यागने योग्य है। समस्त कर्म के त्याग हो जाने पर जो सम्यक्त्वादी आत्मा के स्वभाव होते हैं प्रगट, उनके परिणमन से वास्तव में मोक्ष प्रगट होता है। और वह जो सम्यक्त्वादी स्वभाव का परिणमन है निष्कर्म अवस्था के साथ, जिसका कहना चाहिए जिसका स्वभाव विकसित होता चला जा रहा है। तब निष्कर्म अवस्था में वो आत्मा निश्चित ही अपने ज्ञान स्वभाव को शीघ्र प्राप्त करता है। उसका ज्ञान, ज्ञान माने परिपूर्ण ज्ञान माने केवल ज्ञान, अपने आप उसकी परिणति में प्रकट होने के लिए दौड़ा चला आता है। दौड़ा चला आता है का मतलब दौड़ वोड़ कोई नहीं लगाता, का मतलब ये है कि कर्म अतिशय शीघ्र अल्प समय में प्रकट हो जाता है। अंतर मुहूर्त को अगर ज्ञान ज्ञान में टिक जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हुए बिना रहता नहीं है, ऐसा नियम है। इस तरह से इस 109 नंबर की जो कलश है, 9 नंबर बुक है, उसका ये अर्थ है। और हम इसके साथ साथ पंडित जयचंद जी का भावार्थ भी 109 का पढ़ रहे, उसमें उन्होंने दो लाइनों का भावार्थ लिखा है। वे ये कहते हैं कर्म को दूर करके अपने सम्यक्त्वादी स्वभाव रूप परिणमन करने से मोक्ष का जो कारण रूप होने वाला ज्ञान है वो अपने आप ज्ञान प्रकट होता है, और तब उस ज्ञान को प्रकट होने से कौन रोक सकता है? प्रतिबंधक कर्म तो थे खाली मिथ्यात्व अज्ञान और कषाय, और जब मिथ्यात्व अज्ञान कषाय का स्वभाव के आश्रय के बल से नाश कर दिया, तो अब ज्ञान को प्रकट होने में जब बाधक कारण कोई रहा नहीं तो वो अल्प समय में ज्ञान प्रकट हो जाता है और आत्मा केवल ज्ञानी बन जाता है। और केवल ज्ञानी बनने के बाद आयु प्रमाण रहकर सिद्धत्व दशा को प्राप्त करता है। इस तरह से ये 109 नंबर के कलश में सारे कर्मों को त्याग योग बताया और पुण्य पाप को भी त्याग योग बताया, और निष्कर्म अवस्था के द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करने की स्थिति बताई। अब आगे जो 110 नंबर का कलश जो अपन ने अभी पढ़ लिया था, उस 110 नंबर के कलश की उत्थानी का मैं ऐसा लिखा, जब आशंका उत्पन्न हो कि जब तक अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के कर्म का उदय रहता है तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? और कर्म और ज्ञान दोनों यानी कर्म के निमित्त से होने वाली स्वासो परिणति और ज्ञान परिणति दोनों एक साथ कैसे इनके समाधान के लिए यह जो 110वां कलश है वो आया है? पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न में यह आया कि सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहते हैं, तो सम्यक दृष्टि तो बहुत सी क्रियाएं करता है, घर की अशुभ क्रियाएं भी करता है और मंदिर जाकर के शुभ क्रियाएं भी करता है, तत्व चिंतन की भी क्रिया करता है, लौकिक काम भी करता है। उसका वह ज्ञान, उसका वह श्रद्धान है और वो ज्ञानी है, ये बात सच है? मुझे तो नहीं लगता। आज की वर्तमान के जो लोग हैं वो भी यही शंका करते हैं कि अपने को ज्ञानी कहते हैं और लौकिक कार्य बराबर करते हैं, शुभ कार्य भी करते हैं, अशुभ कार्य भी करते हैं। ऐसी अवस्था में ज्ञान, वो आत्मा ज्ञानी कैसे कहला सकता? क्या ज्ञान और कर्म एक साथ रह सकते हैं? ऐसा उसका प्रश्न है। लेकिन आचार्य उसका जवाब देने वाले हैं और उस जवाब में आचार्य ने ये दिया, ये कहा कि जब तक यावत माने जब तक ज्ञानस्य कर्म विरति, ज्ञान की कर्म विरति पूरी नहीं होती है, भली भांति पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, तब तक कर्म का और ज्ञान का समुच्चय माने साथ साथ में रहना शास्त्र को स्वीकार है, जिनवाणी को स्वीकार सकते हैं, पुण्य भाव भी रह सकता है और आत्मा का शुद्ध भाव, श्रद्धान भाव या ज्ञान भाव भी रह सकता है। इनमें रहने में विरोध नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ रह सकते हैं। कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा है और उसके एकत्रित रहने में
पंडित जी उसके लिए आप कुछ उदाहरण देके समझा सकोगे?
हाँ, अब मैं देता हूँ इसका उदाहरण। पहले पूरा तो बोल लें, ये श्लोक का अर्थ पूरा किया, उसका विश्लेषण करेंगे, है ना? इस तरह से कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा है, क्योंकि शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञान और कर्म दोनों जब तक पूर्णता को प्राप्त, यानी ज्ञान जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होता तब तक ज्ञान के साथ में कर्म देखा जाता है, तो क्या कर्म और ज्ञान साथ में रह सकते हैं? ऐसा प्रश्न किया। और अगर कर्म और ज्ञान साथ में रह सकते हैं तो फिर उस आत्मा को जो कर्म कर रहा है उसको ज्ञानी कहा जा सकता है? ये प्रश्न है। तो आचार्य का जवाब यहाँ से शुरू होता है कि कर्म और ज्ञान का एकत्रितपना शास्त्र में कहा है, अर्थात ये कि कर्म और ज्ञान साथ में रह सकते हैं और उनके एकत्रित रहने में भी कोई विरोध नहीं है, कोई हानि नहीं है। ये भी गजब बात है। पुण्य भाव रूप में है और ज्ञान भाव रूप में है। पुण्य भाव ज्ञान भाव नहीं हो सकता, ज्ञान भाव पुण्य भाव नहीं हो सकता, इसलिए दोनों के संग में रहने में कोई हानि नहीं है। किस अवस्था में? साधक अवस्था में। किंतु यहाँ इतना विशेष जानना, अब देखिए विशेष समझा रहे हैं, ये विशेष जानना कि आत्मा में जो अवस्पने से, अवस्पना माने पराधीन पने से, कमजोरी से, चरित्र मोह के उदय से, इसको अवस्पना कहते हैं। चरित्र मोह का उदय कहो, आत्मा की कमजोरी को सार्थ कहो या उसकी कमजोरी कहो, नवड़ाई कहो, ये इसके कारण आत्मा के जो अवस्पने से कर्म प्रकट होता है, वो अवस्पने से कर्म प्रकट होने वाला कर्म बंध का तो कारण है, वो कर्म चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, कर्म का स्वभाव बंध कराना है। इसलिए ज्ञान के साथ वर्तने वाला जो कर्म, वो शुभ कर्म भी बंध का तो कारण है, पर जो एक परम ज्ञान है वह एक ही है, वह एक परम ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, जो कि स्वतः मुक्त स्वभाव वाला है। मन इस कलश में ये कह दिया कि जब तक मुक्ति नहीं होती, ज्ञान और कर्म का सानिध्य अबुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक दसवें गुण स्थान तक पाया जाता है। वो दसवें गुण स्थान तक पाए जाने वाला कर्म और ज्ञान का समुच्चय बना, साथ पना होने पर भी कर्म कर्म रूप रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, मगर कर्म बंध का कारण बनता है, ज्ञान निर्जरा का और मोक्ष का कारण होता है। और एक समय ये आता है कि वे संग में वर्तते हुए ज्ञान प्रबल होता चला जाता है और वो जो संग में वर्तने वाला शुभ भाव है वो हीन होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, और ऐसा अवस्था आ जाती है कि ज्ञान परिपूर्ण प्रबल पने प्रकट होकर केवल ज्ञान पर रूप परिणत हो जाता है और शुभ अशुभ भाव का कर्म भाव का सर्वथा अभाव हो जाता है। ऐसी दशा होती है, इसलिए कर्म और ज्ञान के साथ में रहने में कोई भी विरोध नहीं है। अगर कर्म और ज्ञान साथ में न रहे तो साधक अवस्था में छठवें गुण स्थान से आगे ये कर्म और तुम्हारे से उसके कर्मोदय की जो अवस्था चलती है अबुद्धि पूर्वक, वो दोनों कैसे बनेंगे? और उन दोनों के बने बगैर ये मिश्र भाव जो कि छठे सातवें गुण स्थान से दसवें गुण स्थान तक ये मिश्र भाव चलता है, उस काल में आंशिक अंश राग का अबुद्धि पूर्वक का चलता है और मुख्य अंश वीतरागता का चलता है। ये दोनों दसवें गुण स्थान तक चलते, दसवें के अंत में कर्म का क्षय हो जाता है, वीतराग दशा पूरी प्रकट हो जाती है, मोह रहित दशा वीतरागता प्रकटती है और अल्प समय में केवल ज्ञान होता है। इसलिए इनके साथ साथ रहने में कोई भी विरोध नहीं है। इतना अवश्य है कि कर्म अगर रहेगा तो कर्म अपना कर्म का काम बंद कराना है, वो आंशिक बंद ही कराएगा, और ज्ञान भाव रहेगा तो ज्ञान का काम निर्बंध दशा कराना। तो ये साधक अवस्था में दोनों वर्तते हैं, लेकिन दोनों में वर्तन में ये विशेषता पाई जाती है कि ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता जाता है स्वरूप की स्थिरता के बल पर, और कर्म नाश को प्राप्त होता जाता है। और एक समय आता है दसवें गुण स्थान के अंत में कर्म सर्वथा नष्ट हो जाता है और ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण पने प्रकट हो रहा है। तो परिपूर्ण प्रकट होने के लिए वो अभी वीतराग दशा में ज्ञान पहुंच जाता है, बाद में अज्ञान क्षयोपशम अज्ञान का अभाव होने पर वो ज्ञानावरण के अभाव से केवल ज्ञान रूप परिणम जाता है। तो ज्ञान में और ज्ञान की क्रिया साधक अवस्था में जो बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक पाई जाती है, छठवें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक पाई जाती है, सातवें गुण स्थान से शुभ भाव शुभ परिणति अबुद्धिपूर्वक पाई जाती है। इस तरह से ये दोनों रहते हैं पर उनमें विरोध नहीं होता। हमने तो ऐसा सुना है, आपने भी सुना होगा कि गंगा और जमुना की धारा एक साथ बहती है, लेकिन गंगा की धारा जमुना में नहीं मिलती और जमुना की धारा गंगा में नहीं मिलती, और दोनों मिलकर बह रही हैं, मगर दोनों धाराओं का जल बिल्कुल न्यारा न्यारा चलता है, ऐसा ऐसा नियम है। तो गजब बात है, एक ही नदी में दो धाराएं एक साथ चल रही हैं। अरे नदी की बात क्या करें, हमने तो ज्योग्राफी में ऐसा पढ़ा है कि समुद्रों में भी अलग अलग धाराएं बहती हैं। समुद्र के अंदर एक गर्म धारा चलती है तो वो गर्म रूप में ही धारा चलती है, उस धारा की मर्यादा में जो पानी होगा वो गर्म ही होगा। अन्य अगर कोई शीत धारा चल रही है तो उसका पूरी मर्यादा वाला पानी ठंडा होगा। अरे जब इन जड़ में भी परिणमन अपनी मर्यादा में चलता है तो ये चैतन्य के भावों में विकारी परिणमन की धारा और ज्ञान यानी कर्म की धारा और ज्ञान की धारा न्यारी न्यारी चले तो आश्चर्य की क्या बात है। इसलिए वो नाटक समय सार में ऐसा लिखा, बहुत बढ़िया इसी का अनुवाद किया है उन्होंने नाटक में समय सार बनारसीदास जी ने, और उन्होंने ये लिखा, जोलों अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वथा। ये बिल्कुल इसका अनुवाद है जो मैं सुना रहा हूँ, जोलों अष्ट कर्म को विनाश नहीं सर्वथा, तोलों अंतरात्मा धारा दो ही वर्णी, दो धाराएं कही है, एक सुभाशुभ कर्म धारा, एक ज्ञान धारा, एक सुभाशुभ कर्म धारा, पर दोहू की प्रकृति न्यारी 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 करनी, कर्म की कर्म धारा बंद की करण हार, ज्ञान धारा मोक्ष की करनी, और भव समुद्र तरणी, ये शब्द उसमें आए हैं। भव से पार करने वाली ज्ञान धारा है, कर्म का नाश करने वाली ज्ञान धारा है, लेकिन सुभाशुभ कर्म धारा है वो बंद की करने वाली है, बंद बढ़ाने वाली है। इन दो धाराएं साधक अवस्था में दोनों साथ में रह सकती हैं। शिष्य का यही प्रश्न था कि इस सम्यक दृष्टि के कर्म धारा भी चल रही है और अज्ञानी भी कहलाता है, या तो कर्म धारा बिल्कुल अभाव हो जाए तो ज्ञानी कहो, या फिर ज्ञानी है तो कर्म धारा होना ही नहीं चाहिए। बहुत से कहते हैं ना, जब आत्मा ज्ञाता दृष्टा है तो तुम खाते क्यों हो, पीते क्यों हो, मंदिर क्यों जाते हो, पूजा क्यों करते हो, ऐसे कुतर्क करते हैं बेचारे अज्ञानी लोग जिन्हें ज्ञान नहीं, पर उन्हें नहीं है ज्ञान, ज्ञान का काम करता है और चारित्र में जो कषाय भाव चलता है उसके उदय से जो क्रियाएं होती हैं उनका काम अलग चलता है। वो कषाय धारा ज्ञान धारा वो कर्म धारा कहलाती है और ये ज्ञान धारा है। कर्म धारा बंध रूप है, ज्ञान धारा निर्बंध रूप है। इस तरह से इन दोनों धाराओं का एक साथ होने में कुछ भी विरोध नहीं है, ये बात यहाँ पर कही गई है। इस तरह से ये अपना समय अभी का तो 45 मिनट से ज्यादा कुछ हुआ है, उतना पूरा हुआ, अभी भी 14 मिनट 13 मिनट के करीब टाइम है। आप इसमें जो भी क्वेश्चन करें वो पूछें।
पंडित जी, पंडित
हाँ हेलो,
पंडित जो एक ज्ञान धारा और कर्म धारा बताई, वो ज्ञान धारा और राग धारा हो सकती है ना?
ज्ञान धारा और
राग धारा,
राग धारा हाँ, राग धारी को कर्म धारा कहते हैं, लेकिन कर्म धारा आखिरी तक चलती है जब तक सब कर्मों का नाश नहीं होता। यानी 14वें गुण स्थान में भी जब तक वे प्रकृतियां बची हैं, 85 प्रकृतियां, तब तक वो 85 प्रकृति किस धारा में शामिल करेंगे? वो कर्म धारा में शामिल होती। इसलिए जब तक 8 कर्मों का विनाश नहीं होता है तो आत्मा के साथ में 2 धाराएं चलती, एक ज्ञान धारा चलती है जिसमें रत्नत्रय गर्भित रहता है, एक कर्म धारा चलती है जिसमें 12वें गुण स्थान तक तो भाव कर्म गर्भित रहते हैं और 12वें के आगे मात्र द्रव कर्म की और नो कर्म की धारा चलती है, मगर वो धारा चलती है। ये दोनों धाराएं जब तक सर्व कर्म का क्षय न हो तब तक ये आत्मा में चला करती। तो भाव कर्म रूप भी है, द्रव कर्म रूप भी है, दोनों का नाम कर्म धारा है।
पंडित जी, 160 गाथा में जो बात की ना कि कर्म स्वयं बंध स्वरूप है, उसका भाव क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं? कर्म सब स्वयं बंध स्वरूप है।
देखो, एक चीज को कहने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कहा कि वो जो अपना स्वभाव है उसका बाधक कर्म बताया, जैसे उदाहरण के लिए मिथ्यात्व कर्म है, वो कर्म का बाधक है, ये एक उसका कारण स्वरूप बताया कि ये बाधक बनता है इसमें अपने स्वभाव में, तो एक परिचय उसका कराया बाधक होने की अपेक्षा, विरोधी परिचय कराया। दूसरा परिचय ये कराया कि अगर इस कर्म का उदय हो गए तो आत्मा में परिणमन स्वभाव रूप नहीं होता, आत्मा में परिणमन मिथ्या दृष्टि रूप होता है और आत्मा मिथ्या दृष्टि कहलाता है। सो मिथ्या दृष्टि पने का एक कारण है और अपने स्वभाव का घातक कारण है, 2 बातें हो गई। एक में तो ये कहा कि घातक स्वभाव वाला है, दूसरे में ये कहा कि ये तुम्हारा ये जो अपनी पर्याय में पैदा करेगा और मिथ्या भाव को पैदा करेगा, ये दूसरा कारण बताया। और कार्य के रूप में ये बताया कि ये जो मिथ्यात्व है ये स्वयं कर्म रूप कार्य है। तो कार्य की अपेक्षा बताया, कारण की अपेक्षा बताया और किसका प्रतिबंधक है उस स्वभाव की अपेक्षा, 3 बातें बताई। और हैं 3 बातें, एक कर्म में 3 पने पाए जाते, बाधक पना भी पाया जाता है, स्वयं बाधक स्वरूप है, बंध रूप है ये भी पाया जाता है, स्वयं बंध का कारण है ये भी पाया जाता है, और स्वयं निर्बंध स्वभाव का बाधक है ये कारण पना भी पाया जाता है। इसलिए 3 तरीके से एक बात को कहा है।
बहुत बढ़िया,
जैसा है ना, हाँ, जैसे कोई हमारा विरोधी है तो हम उसको 3 तरीके से उसका वर्णन कर सकेंगे, ये मेरा तो विरोधी तो है ही और ये मेरा स्वभाव का, ये मेरे कार्य का जब जब भी विरोध होता है तो उसका कारण ये, तो कारण रूप में भी हमने बता दिया और हमने ये भी बता दिया ये स्वभाव से ही मेरा विरोधी है क्योंकि इसका काम मेरा विरोध करने का ही है। कर्मों का काम ज्ञान के विरुद्ध आने बंद कराने का है, ज्ञान का काम निर्बंध दशा कराने का। इसलिए 3 तरीके से उसका परिचय करा के सब प्रकार से उसको हे दिखा करके उसकी पूरी पने दृष्टि छोड़ाई है और उसका पूरा पक्ष छोड़ाया है और परिपूर्ण पने आत्मा का ज्ञान स्वभाव का पक्ष कराया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हाँ जी,
हाँ जी, दूसरा आपने
गो अहेड।
बस एक चलो क्वेश्चन पूछ लियो रजनी भाई।
ओके, आपने जो अंतर्मूत में केवल ज्ञान बोला वो उसमें अंतर्मूत कौन सा अंतर्मूत गिनना, 48 मिनट वाला की कोई अंतर्मूत?
देखो, मूल अंतर मुहूर्त तो 48 मिनट से जो कुछ 2 समय कम अवस्था होती है वो अंतर मुहूर्त कहलाती है। समझ में आया? लेकिन उस अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद होते ऐसे में। तो जैसे कोई जीव ने ध्यान की मग्नता शुरू की सातवें गुण स्थान में, अब वहां से उसको केवल ज्ञान पाने में अथवा मुक्ति पाने में अंतर मुहूर्त का टाइम लगेगा, लेकिन वह मुक्ति पाना सबके लिए अंतर मुहूर्त में नहीं होता, केवल ज्ञान पाना मुख्य होता है। तो वो केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में होता है, क्यों होता है कि जो शुद्धोपयोग रूप भाव है ध्यान, उसका भी काल उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त होता है, उससे ज्यादा का काल किसी भी ध्यान का नहीं होता है, ध्यान का काल ही अंतर मुहूर्त है। और उसमें यह है कि सातवें गुण स्थान से छठे गुण, सातवें से आठवें में जाएगा तो भी उसमें टाइम कितना लगेगा कि एक मध्यम अंतर मुहूर्त टाइम लगेगा, फिर आठवें से नौवें जाएगा तो भी मध्यम अंतर मुहूर्त लगेगा, और सीधा तेरहवें में भी पहुंच गया तो वो फिर अंतर मुहूर्त पूरा बड़ा अंतर मुहूर्त कहलाता है। इसलिए जो अंतर मुहूर्त कहा है वो ना तो जघन्य है ना मध्यम के असंख्यात भेदों वाला है, ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है जो कि 48 मिनट से कुछ एक दो समय कम वाला होता है, ये अंतर मुहूर्त उसका माप है।
जो भरत चक्रवर्ती
शुद्धोपयोग 48 मिनट से दो समय कम तक रहना चाहिए केवल ज्ञान पाने के लिए, कि वो असंख्यात में से कम में भी चलेगा।
हाँ, फिर केवल ज्ञान हो जाने के बाद शुद्धोपयोग का कोई कारणपना नहीं रहता है, कारणपना तभी तक कहलाता है कि जब तक वो दशा प्रगटी नहीं, अब जब दशा हो गई तो कारणपना खत्म हो जाता, व्यवहार नहीं रहता वो कारणपने का। मुख्य दशा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कारण के रूप में विद्यमान नहीं कहलाते, माने यद्यपि श्रद्धा ज्ञान चारित्र तो है लेकिन कारणपने का व्यवहार नहीं हुआ करता, वो व्यवहार संसार अवस्था में ही चलता है।
हाँ, बस अभी हमारा समय होने लगा है तो हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं और फिर बाद में एक अनाउंसमेंट है तो उसके लिए सब रुकना। अमिंद्र भाई, प्रतिमा, हेलो अमिंद्र भाई, प्रतिमा, हेलो प्रतिमा, हाँ पता नहीं, हाँ शायद बोला था उनको, अच्छा हाँ हाँ तो हेलो हेलो ज्योत्सना बेन,
हाँ जी,
हाँ तम लइए।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जवाई के ज्ञान के सुझे लोका लोक सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।
चिनवाणी मात की जय हो,
जय हो।
हवे अनाउंसमेंट छे, काले पंडित जी नो कल पंडित जी का आखरी प्रवचन रहेगा और थर्सडे भावी भाई, ओके
बोले
हाँ थर्सडे सारे आपकी आवाज
नहीं आ रही है,
हाँ एक्चुअली थर्सडे बता रहे हैं ना, वो हमारे जो गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन चलते हैं बहन श्री के वचनामृत पर, तब पंडित जी आएंगे, उसका टाइम 7:30 का रहेगा
तो प्लीज सब नोट कर दीजिए कि थर्सडे से टाइम भी चेंज हो जाएगा 7:30 और तब उत्तम चंद जी लेंगे सहानुभूति दर्शन पे। और भानु बहन आपके पास वो क्वेश्चन आ गया है?
नहीं नहीं हजी नहीं आवियो।
यही कहना था ना आपको।
हेलो भानु बहन, दूसरी बात यह है कि नंबर चेंज हो जाएगा।
हाँ
नंबर जो है ना 1712-432-0900 और उसका कोड है 781-381-POUND।
धन्यवाद भावी भाई मनीषा बहन।
और इसके बाद ईमेल सबको चली जाएगी।
आज बस हाँ धन्यवाद पंडित जी और आज हमारा सेशन समाप्त करते हैं।